ॐ शांति, ॐ शांति। बाबा सभी के दिलों का सहारा है। इस समय दुनिया में इतना दुख है तो भगवान को पुकारते रहते हैं, हे भगवान आओ हमें सुख दो, शांति दो, तो आओ आओ हाँ पुकारते हैं। और बच्चों ने क्या किया है, दुख देने वाला कौन है, रावण। तो बच्चों ने रावण पर केस किया है, किया है आप सब ने रावण पर केस, क्योंकि बहुत दुख दिया है ना। अब जो दुख देता है उस पर केस करते हैं ना, न्याय मांगते हैं तो केस करते हैं, तो फिर जज न्याय देता है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी रावण ने बहुत दुख दिया है, इसलिए तुमने केस किया है। कौन सी कोर्ट में, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस किया है रावण पर। तो अभी बाबा आए हैं तुम्हारी सुनवाई करने। तो सुनवाई होती है तो दुखों से छूट जाते हैं, वो केस खत्म हो जाता है। और शिव बाबा तो है ही न्यायकारी, सच्चा न्याय देगा। इसलिए गायन है ना कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दुनिया में तो बहुत अंधेर है, परंतु सच्चा न्याय तो केवल एक शिव बाबा ही दे सकता है। तो इसीलिए न्यायकारी बाप अब आए हैं न्याय देने के लिए। और हम बच्चे हाँ बाबा से जब न्याय मिल लेते हैं तो सब दुखों से छूट जाते हैं। तो आज की मुख्य मुरली यही है मेनली। और दूसरा बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि तुम बच्चों को कैसे सेवा करनी है। सबसे पहले तो अपना अपनी जो वाणी है वो बहुत मीठी बनानी है, तभी सेवा में सफलता होगी। कोई भी कार्य में सफलता के लिए हमारी वाणी बहुत मीठी चाहिए, बहुत मिठास चाहिए जुबान में, क्योंकि ये जो जीभ है ना इसके लिए ही कहते हैं। ये 2.5 इंच की जुबान है, केवल 2.5 इंच, इसमें कोई हड्डियां नहीं होती है। लेकिन अगर ये कड़वे बोल बोलती है तो सारे शरीर की हड्डियां ही तोड़ देती है ना, टूटवा देती है। और ये 2.5 इंच की ही जुबान किसी को तो तख्त दिलाएगी और किसी को तख्ते पर चढ़ाएगी, फांसी पर भी लटका सकती है ये 2.5 इंच की जुबान। तो आज बाबा ने कहा विशेष सेवा में सफलता चाहिए, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो अपनी जुबान को बहुत मीठी बनाओ। तो आज बाबा की इस पर भी हाँ मुरली है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 6 जनवरी 2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एक एक बोल अगर वरदानी बोल बन जाए तो देखो हाँ सब झुकेंगे आपके आगे। अगर कटाक्ष भरे बोल होंगे या उसमें जैसे जहर घुला हुआ है तो क्या होगा, वो वाणी से नीचे ही गिरेंगे। तो तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। वाणी से भी जैसे तीर लग जाता है, फिर भले कितना भी सॉरी कोई कहे पर वो वापस तो नहीं आएगा ना तीर, वो तो घायल कर देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, नम्रता होगी, मुख बोल मीठे होंगे तो उनका दिल जीत सकेंगे, नहीं तो दिल से उतर जाते ना। कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए, नम्रता भी हो प्रेम भाव भी हो और मुस्कुराहट भी हो, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अब भले बात कितनी भी कड़वी दो, लेकिन अगर नम्रता से देंगे, मिठास से देंगे, नम्र और फिर प्रेम भाव से देंगे, वो कड़वी दवाई भी अगर देंगे ना, वो भी कड़वी नहीं लगेगी। तो सबसे कड़वी दवाई कौन सी हम लोगों को देते हैं, लेकिन मिठास से देंगे तो वो स्वीकार करेंगे। और तो कौन सी है वो दवाई, समझाना चाहिए कि ये वही महाभारत लड़ाई है। अभी महाभारत लड़ाई होनी है तो क्या होगा, उससे विनाश होगा, ये कड़वी दवाई। कई लोग कहते शुभ शुभ बोलो, अभी थोड़ी ये होना, अगर ये होगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते यही शुभ है, तो पर समझाओ ऐसे जैसे कि उनको बुरा भी न लगे। तो समझाना चाहिए कि ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है, और उसके लिए बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, क्योंकि इसी से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। मैं आपको सत्य कहता हूँ, सत्य कहो पर प्यार से कहो, मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति का फल भगवान देने आया है, ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख नहीं दो। ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी शिक्षा है, किसी को दुख नहीं दो। गीत है, वो गीत भी इसी अनुसार है, सुनवाई हो रही है। आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो किस दिन का रास्ता तकते हैं, कि भगवान आए और सुनवाई करे, हम सबको न्याय दे। तो आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। ये बहुत सुंदर तरीका है विचार सागर मंथन करने का। चलो कोई भी गीत बजता, लेकिन उससे हम क्या सीखते हैं, क्या शब्द है जिनको हमें अपने अंदर धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है अर्थ। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। तो आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आज आ गया है, वो घड़ी आ गई है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं, जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। लटकता रहता है ना केस, फिर वो दूसरी डेट देते रहते हैं, तो कितने परेशान हो जाते हैं जिन्होंने केस किया, भाई सुनवाई करो, हमारे हमको न्याय दो। तो बाबा कहते हैं कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस है, कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। बहुत बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। भगवान तो सुप्रीम है ना, उनके कोर्ट में मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है, बिल्कुल होती है, हो ही नहीं सकता कि सुनवाई ना हो। इसलिए कहते ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है, बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तो देखो बाबा ने क्या कहा है, बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। और यहाँ इस दुनिया में तो तुम्हारे पास देखो ये छोटी छोटी घड़ियां हैं, तो भी एक्यूरेट नहीं चलती है। अब कहां कितने बजे, कहां कितने बजे, देखो 2-3 मिनट का अंतर पड़ी जाता है। तो इसीलिए तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती है। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। वैसे तो एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक 12 बजते हैं, गीत बजता है और सब जाते हैं ना भोजन पर। पहले तो घंटा बजता था, बाबा कहते थे घंटा बजाओ, तब तो ये गीत वीत नहीं थे, घंटा तो 12 बजे का घंटा बजता था। घंटी जैसे वो यहाँ लगी रहती थी, ये जो पेड़ है ना हिस्ट्री हॉल के सामने, तो वहां पर वो घंटी रहती थी और एक भाई या बहन मुकरर होते थे, वो घंटी बजाते थे, अभी 12 बजाए भोजन पर आओ। अभी तो गीत बजते तो पता चलता कि अभी भोजन का टाइम हो गया, 7:30 का टाइम हो गया है, तो चलो भोजन पर। तो बाबा कहते हैं तो यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, तो घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई भी बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है, अभी तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है, क्यों क्या समझते थे, भगवान ही दुख देता है, पुकारते भी उसको ही थे कि सुख दो, फिर ये भी समझते कि दुख सुख तो सब भगवान देता है, तो कौन दुख देता ये भी पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापुर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। ये है बेहद की रात, शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आए हैं। तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं, वो भी दिखा दे, श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय तो सब सोए हुए थे, सब जो भी पहरेदार थे वो भी सो गए, तो इसीलिए कैसे सहज उसको निकाला गया। तो अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं। बच्चों को दिन कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। तो बिना बाबा की याद के पतित से पावन कैसे बनेंगे, क्योंकि पतित से पावन बनना है इसलिए मुझे याद करो। बाप ही पतित पावन है, वो जब आए तब तो सुनवाई हो, अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। जो दुख देने वाला रावण है उस पर जीत पाने की शिवती बताते हैं, तो ये सुनवाई हो जाती है, फिर हम दुख से छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। कौन सा है सहज बनने का, मुझे याद करो। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब आदि का कितना जोर वास होता है। अब तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। अभी साइंस का कितना बड़ा शो है, कितना आवाज है, लेकिन तुम साइलेंस के बल से को योग भी कहा जाता है, तो हम साइलेंस के बल से, योग बल से इस साइंस पर भी जीत पाते हैं और विश्व के मालिक हैं। तो साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है और क्या कहती है, बाबा आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है, उससे तो विनाश होना है, अभी साइलेंस के बल से हम स्थापना कर रहे हैं। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते, जो युद्ध के द्वारा व हथियारों के द्वारा कभी भी विश्व पर जीत नहीं पाई जा सकती। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते, ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, प्रदर्शनियां उस समय निकली थी तो बाबा ने कैसे प्रदर्शनी में क्या समझाओ, क्या चित्र हो, सब बाबा बताते थे। तो आज बाबा ने कहा कैसे प्रदर्शनी में किस प्रकार से सेवा हो। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल, तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी, राजधानी होगी, सतयुग में ये हमारी राजधानी दिल्ली होगी। दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाता है, पांडवों के किले तो नहीं है, वो तो किले दिखाते, पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है, कब किला बांधा जाता है, जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं तो उससे बचने के लिए किला बांधा जाता है। तो किला तब बांधा जाता है जब कोई दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार ही नहीं रहती है, तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, भाई चलो एक मिनट मौन में हम रहते हैं, किसी की भी डेथ होती है तो वो मौन में रहते हैं एक मिनट, लेकिन बाबा कहते वो तो आर्टिफिशियल साइलेंस हो गई, चलो एक मिनट का मौन, पर मन तो उस समय कितना भागता है। तो तुम्हारी है रियल साइलेंस, ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है ना, नॉलेज है पढ़ाई, तो पढ़ाई भी एक बहुत बड़ा बल है और शांति भी एक बहुत बड़ा बल है, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनते हैं, वो पढ़ाई की एग्जाम्स दिए तब जाके पुलिस में भी बड़ा पद मिलता है, कितना बल रहता है। अब वो सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली, तुम्हारी हर बात रूहानी है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाला खुश हो जाए। वरदानी बोल निकले, कोई ऐसा श्राप ना निकले, वरदानी बोल निकले तो कितना खुश हो जाएंगे। कई तो कहते हैं बहन जी बोल हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, तो और कुछ बोल बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं एक एक बोल ऐसा फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है। अगर कुटुंब परिवार लड़ेंगे तो फिर वो बाबा का नाम बदनाम होता ना, तो हमको ब्रह्मा कुमारी सीधा बोलेंगे। पहले नहीं कहते थे, ज्ञान में नहीं थे तो भले वही काम करते थे, लेकिन ऐसे नहीं कहते थे। अभी उनको बहाना मिल गया कि वहां तुमको यही सिखाया है क्या, तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत मिलना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो, कायदे अनुसार चलना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ों के साथ प्यार से चलना है, मुख से अक्षर ऐसे मीठे ले जो सब खुश हो जाए। बोलो ना भव, ऊंचते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार बात करनी चाहिए, समझो कोई बड़ा भाई हो, हाँ बड़े हैं कोई भी है बड़ा भाई हो तो बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद, आयु में बड़ा हो भले लेकिन छोटा भी उनको प्यार से कहेगा दादा बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहा जाता है वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, किसका ज्ञान यज्ञ कहते हैं, रुद्र का। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो रुद्र शिव बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा है राजाई प्राप्त करने के लिए। आप कहते हैं भगवान उवाच माम एकम याद करो। क्यों क्यों माम एकम याद करो? क्योंकि अभी सब की अंतिम घड़ी है, सबकी अंतिम घड़ी है, वान परस अवस्था है, सबको वापिस मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो, तो अभी भी सबके मरने का समय है, वान परस अवस्था हो गई है, तो इसीलिए भगवान को यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकेगा, मौत से कोई बच नहीं सकेगा। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, गारंटी है बाप की याद से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते क्या हो गया है, खाद पड़ते पड़ते आत्मा रूपी सोना में 24 कैरेट सोना थी आत्मा, तो खाद पड़ते पड़ते 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा का जाता है, कोई काम का नहीं, काला पड़ जाता है, नाम का सोना होता है और फिर काला हो जाता है, तो मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा, अभी तो जेवर भी सब इम्प्योर है, शरीर सारे इम्प्योर है, अपवित्र है, क्योंकि आत्मा रूपी जो सोना है वही इम्प्योर हो गया। तो प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये तो वही महाभारत लड़ाई है, ये कड़वी बात, लेकिन मिठास से कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। ये तो वही महाभारत लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहां भी ये नॉलेज मिल न सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, आप कहो दूसरों को, मैं आपको सत्य कहता हूँ कि ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सत्युग में भक्ति होती नहीं, तो ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय और मौका देखा जाता है ना, कैसे मौका देखा जाता है, ऐसे ही नहीं तीर लगा चलाते हैं वो, आप वहां पर जो जिसको हमें तीर मारना है वो समय पर और एकदम बिल्कुल हमारे उस टारगेट के नजदीक हो, सामने हो, तो सहज तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं जब तीर मारना होता है तो समय और मौका देखा जाता है। तो ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, तीर कब मारना है। हा? बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी चीज है, अब ये भी अगर किसी को कहना है तो कितना प्यार से कहना पड़ेगा ना। पवित्रता तो बड़ी अच्छी चीज है, ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना, पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करे ये तो शोभता नहीं है। अब मंदिर में भी क्या होता है, ऐसे नहीं कि कोई गृहस्थी या ऐसे ही कोई बाहर का व्यक्ति जाकर के मंदिर की मूर्ति के आगे जाकर के पूजा करेगा, वो जो पुजारी उनके मुकरर है वो ही करेंगे। हम भी अगर प्रसाद ले जाएंगे तो हम वो पुजारी को ही देंगे, और पुजारी को देंगे, पुजारी उस मूर्ति के आगे रखेगा। क्योंकि वो समझते ना भाई ये गृहस्थी लोग अंदर मूर्ति को टच नहीं कर सकते, और वो जो पुजारी है वो तो समझते हम तो ब्राह्मण है, तो इसीलिए वो टच करते हैं। तो बाबा कहते हैं पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने, पर पावन की पतित बैठ पूजा करे ये तो शोभता नहीं है। इसलिए वो जो गृहस्थी लोग जो बाहर के लोग हैं वो अंदर नहीं जा सकते वो गर्भगृह में। तो बाबा कहते पावन की पतित बैठ पूजा करे ये तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं, जो पक्के कट्टर वल्लभाचारी होते हैं ना, पक्के वैष्णव होते हैं, इतने छुआछूत वाले होते हैं जो बात मत पूछो, किसी ने छू भी लिया उनको तो जाके स्नान करते, बहुत छुआछूत वाले। तो कई तो पतित से दूर भागते हैं, वल्लभाचारी कभी पांव को भी छूने नहीं देते, समझते ये छीछी मनुष्य है। मंदिरों में हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाव रहता है, जो दर्शन करने आते हैं वो भी नई मूर्ति को छू सकते हैं। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू न सके उस गर्भगृह में, वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते, फर्क तो है ना। अब वे तो है ही कुक वंशावली ब्राह्मण, भले वो ब्राह्मण है बाबा कहते पर वो तो कुक वंशावली ब्राह्मण है। तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण, अभी भी कई ऐसे मंदिर है जहां पर और धर्म वालों को नहीं जाने देते हैं, नहीं जाने देते। मुझे याद है हम श्रीनाथ द्वारे में गए थे, तो विदेशियों को मैं लेकर गई थी बस भर करके श्रीनाथ द्वारा दिखाने, तो वहां हम खड़े रहे, हमने सोचा दर्शन करने जाएंगे, तो अंदर मंदिर में अलाउ नहीं किया क्योंकि वो विदेशी गोरे लोग थे, तो कही ये गोरे लोगों को मलाव नहीं करते। तो हमने कहा रे ये तो पक्के ब्राह्मण है, ये पक्के वैष्णव है, कभी कुछ भी छूते नहीं, लहसुन प्याज में नहीं छूते हैं, शराब तो दूर, और सब नहा धो करके आए हैं, सब ब्रह्मचारी है। लेकिन नहीं माना, नहीं माना, कितना हमने कहा ये सब ऐसे है हमारे, भले विदेशी है गोरी चमड़ी है, लेकिन नहीं, बोला नहीं नहीं ये दूसरे धर्म के हम नहीं अलाउ करेंगे। फिर हम वहां का जो मैनेजर था उनसे मिलने गए, भाई इनको ये खास दर्शन करने के लिए आए हैं, बाबा इतना वर्णन करते हैं। तो मैनेजर मेरे को हाथ जोड़ता है, कहता है बहन जी मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मैं आपको छुट्टी दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए मेहरबानी करके हाँ इनको अंदर नहीं जाने दो। ठीक है भाई, लेकिन कहने का भाव है। तो कितनी वहां पर ऐसी होती है, कुछ मंदिर है सब तो नहीं। तो बाबा कहते हैं अब वे तो है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे है कुक वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है कौन, ब्रह्मा के जो मुख वंशावली ब्राह्मण है वो ऊंचते ऊंच चोटी है, यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकरण किया जाता है। ये फिर है ज्ञान यज्ञ, ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है फिर ये ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा, कहां प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं, प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, अभी भी कुंभ मेले में बहुत जबरदस्त हम लोगों की प्रदर्शनी होनी है, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा मेला लगना है कुंभ मेले में, हम ब्रह्मा कुमारियों का मेला, और बहुत बड़ी जगह दी है उन्होंने, तो ये भी देखो प्रत्यक्षता का एक रूप है। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आप ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। हाँ कई अभी तो हमारी मनोरमा बहन ने बहुत बहुत कुछ कर रही है, कितने सेंटरों को बुलाया है, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगाई है, मूविंग मॉडल्स बनाए हैं, सब तैयारियां लगभग हो गई है। अभी 13 तारीख से तो वहां कुंभ मेला शुरू हो रहा है, तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करेंगे भी। तो बाबा कहते हैं तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास यही ज्ञान है, डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे कि ये कैसे समझाते हैं। कोई ऐसा बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए, कम समझाने वाले को हटा देना चाहिए, जो ठीक नहीं समझा सकता है उनको हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। क्या है, जब उन दिनों में एग्जीबिशंस बनी थी तो एग्जीबिशन होती थी बॉम्बे में, मुझे याद है जहांगीर आर्ट गैलरी है, बहुत प्रख्यात स्थान है बॉम्बे का, वहां हम लोगों ने एग्जीबिशन की थी। ये 64-65 की बात होगी। तो अब रोज का समाचार हम बाबा को देते थे, दादी जी देते थे, और फिर बाबा उसके लिए राय देते थे। और बाबा जी उनको कहते थे कि ऐसा समझदार समझू हो जो गाइड देवे, कौन सी पार्टी है कैसा है, तो गाइड भी उसी अनुसार देना चाहिए। तो फिर ये कौन संभालेगा, दादी जी ने पूछा। तो निर्वैर भाई भी वहीं थे, तो निर्वैर भाई ने कहा मैं गाइड दूंगा। दादी ने उनको भी कहा कि आप गाइड दो, कौन सा गाइड समझाएगा। तो निर्वैर भाई को बुकरर किया, देखो दादी ने, और वो सबको गाइड देता था, माना गाइड देता था कि आप इस पार्टी को समझाओ। तो देखो बाबा भी कहते हैं, तो इसलिए बाबा की मुरली से ये सब बातें निकली, भाई गाइड कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए जो समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ तो बाबा कहते हैं सुपरवाइज करने पर भी एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं, वो ऊंचते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा, कोई भी सुख धाम का वर्षा दे न सके, भाई भाई नहीं दे सकता, वर्षा देते ही हैं बाप। सब वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हो, परंतु वो क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव आकर क्या करते हैं, आकर राजयोग सिखलाए, वर्षा देते हैं। पर स्वर्ग था, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। 5000 वर्ष की बात है, खंडन कोई नहीं कर सकता। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए, वो सतयुग लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब ही नहीं हो सकता है। स्वास्तिका में भी पूरे 4 में बांटे हुए हैं, हिसाब किया जाता है ना, वो लोग हिसाब तो कुछ भी, इसीलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं, सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं, उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। पतितों को ही बाप उन बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बन जाते हो, ज्ञान रत्नों से सज करके क्या बन जाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, भारत कितना सिरताज था अब सब भूल गए हो, सब भूल गए। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूट कर लगाए, बीबी या खुदाई कर रहे हैं मस्जिद के नीचे या पास पास कितने मंदिर निकल रहे हैं। तो देखो क्या पहले मंदिरों कोई तोड़फोड़ करके उन पर मस्जिद बना दिया, क्या क्या कर दिया मुसलमानों ने। तो बाबा कहते हैं मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते, इतने महंगे महंगे हीरे उनकी अभी कोई इतने बेशुमार उनका मूल्य होगा जो कोई मूल्य निकाल भी न सके, उनकी कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की कोई 5 करोड़ की, उस समय तो करोड़ कितनी बड़ी चीज थी। और बाबा तो जौहरी थे ना, और राजाओं से मिलते थे तो बाबा देखते थे कि उनकी ताज में कितनी बड़ी कितनी अमूल्य मणि है, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, अगर किसी के पास होगा भी ना वो पहनेंगे नहीं, डर लगता है कोई लूट न ले। तो इसीलिए बाबा कहते सब आर्टिफिशियल हुआ पड़ा है इस दुनिया में, सब है आर्टिफिशियल। पाई का सुख बाकी है दुख, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, इसीलिए वो घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वो भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाए, किसको सुनाए, इतना दुख है दुनिया में। वहां तो उस समय तो चलो राजा के पास जाते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे और राजा सुनवाई करता था, लेकिन अब ये किसको सुनाए। राजा रानी तो है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, क्या कर सकते हैं, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयां आदि खिटपिट होती है, पौना समय तो सुख में रहते हो, इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते, तो बहुत बाद में जाकर राजा ही स्थापन होती है। वो सदगति भी नहीं करते, न वो राजा ही स्थापन करते न वो सदगति करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने, वो भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। वो धर्म पिता की आत्मा भी अंत में तो उसी तमो प्रधान स्थिति में है, इसलिए वो भी तो कोई सतो प्रधान नहीं बना सकती, लेकिन बाप ही आते हैं तब सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं, बाबा को लिखते हैं, बाबा को लिखते हैं, क्या लिखते, टीचर लिखती थी, बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं है। क्यों बाबा ऐसे कहते थे, अगर समझ जाए, बहुत अच्छा समझा है और समझ जाए तो कि बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहा है, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए। अब मस्ती तो उसको चढ़ी नहीं है जो आ जाए और बाबा से मिलने आ जाए, मधुबन आ जाए, अब बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर के यहाँ भागे। परंतु ब्राह्मण की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े, ये भी जरूरी है, ऐसे नहीं बस आ जाए, बस पहुंच जाए और कहीं मैं आया हूँ। तो यहाँ तो हमारे चंद्रशेखर भाई पहले चिट्ठी मांगता है, बिना चिट्ठी कोई आते हैं तो कहाँ रखेंगे उनको। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने लिए, बाप को पहचान जाए तो मिलने बिगर रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं। अब नारायणी नशा है, ईश्वरीय नशा है, तो उनकी बुद्धि में देहधारी थोड़ी याद आएंगे। तो बाबा कहते उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है, इसका मतलब अंदर में वो नशा नहीं है ना, ईश्वरीय नशा। बहुतों की बुद्धि भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है। है वो सहज, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे अब बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हो वैसे धंधे से भी छुट्टी पाकर एक दो दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती है तो दो चार दिन छुट्टी लेते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे छुट्टी लेकर योग तपस्या में बैठ जाओ, एक दो दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ। अंदर में कहो सारा दिन मैं व्रत लेता हूँ कि मुझे आज सारा दिन बाबा को याद करना है। तो बट्टियां इसीलिए तो होती है, योग बट्टी इसीलिए तो होती है कि सारा दिन जैसे तपस्या की गुफा में बैठा रहे। अच्छा तो अच्छा व्रत ले लेता हूँ सारा दिन, हाँ बाबा की याद में रहूंगा। बाप की याद में बाबा को याद करने का व्रत कितना जमा हो जाएगा, हाँ योग बल जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी न सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। हाँ बाबा आथत देते हैं, विजय पा लेंगे पुरुषार्थ करते करते। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। ये है मेहनत, हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। डैश तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे, बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी गए, अपने दे दिया संदेश। अभी वो जाने कितना वो भगवान को पहचानता है, कितना कि भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। बस तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और लिए मुख्य सार। पहला, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। अभी भी देखो मधुबन निवासियों की भट्टी चल रही है नीचे, तो देख एक क्लास और बाकी सारा दिन मौन अनुभव कर रहे हैं। तो धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदान, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, यज्ञ में ऐसे ही होता था ना, ब्रह्मा बाबा को देख रहे दृष्टि ली और ब्रह्मा बाबा गुम और उसकी जगह श्री कृष्ण खड़े हैं, ऐसे अनुभव करते थे। तो जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। वो तो बहने भागी बाबा के पास, हाँ श्री कृष्ण से मिलना है तो दादा लेखराज के पास जाओ, वहां तुमको श्री कृष्ण मिलेगा। तो इसीलिए कितनी भागे, सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो, अभी ऐसी सेवा हो जो जो यहाँ आए उनको साक्षात्कार हो, अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। सुना, मधुबन में फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग है। हाँ, ये साधारण लोग नहीं है, यहाँ ये अल्लाह लोग है। स्लोगन, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हरेक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है, हरेक में है। अब उसको प्रत्यक्ष करो, साइलेंस की शक्ति को। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करो, स्वमान कौन सा रखो, स्वमान क्या रखो और क्या अभ्यास करो। तो स्वमान है, मैं आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना हूँ। मैं तना हूँ कल्प वृक्ष की का। दूसरा अभ्यास, योग अभ्यास क्या करो, बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा आदि पिता ब्रह्मा बाप के साथ सृष्टि रूपी वृक्ष के तने में हूँ। अपनी सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी वंशावली टाल टालियों को सकाश देकर खुशहाल बना रहा हूँ। और धारणा क्या हो, हद से निकल विश्व को सकाश देना, हद से निकल विश्व को सकाश देना। और उसके लिए चिंतन क्या करो कि हदें कौन कौन सी है जो बाधा बनती है, जिनसे हमें निकलना है और विश्व को सकाश देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ अच्छा, ये कल वाला था और आज वाला। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। उसके लिए स्वमान है, मैं पीस हाउस हूँ, मैं शांति का घर हूँ। और योग अभ्यास क्या करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाबा से कंबाइंड हूँ। मन बुद्धि शांत और एकाग्र है, मुझसे शांति के प्रकंपन वायुमंडल में दूर दूर तक फैल रहे हैं। संसार की सर्व आत्माएं और प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। और उसकी धारणा क्या है, सर्व प्रति दिल की शुभ कामनाएं रखना, सबके लिए शुभ कामना। और चिंतन क्या करो, वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैलते रहे। उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन हम रखें, कैसे शांति के प्रकंपन फैलाएं वातावरण में। चलो, ओम शांति।